समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा गोस्वामी एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Semicon India 2025 in Delhi, says the day is not far when India's smallest chip will drive the biggest change in the world.
Shri Modi ne kaha, Bharat ne vaishvik aur aarthik chunautiyon ke bawajood sakal gharelu utpad mein record 7.8% ki vriddhi darj ki.
PM Modi hits back at opposition of alleged remarks on his mother.
सूडान के पश्चिमी क्षेत्र में भूस्खलन से मारा पहाड़ों के 83 गांव तबाह, 1000 से अधिक लोगों की मौत, केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा।
बेल्जियम टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट एट यूएन जनरल असेंबली।
और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की और पंजाब में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Nutrition Week. Well, good nutrition is not a choice, it's a lifestyle that defines your health tomorrow.
बिल्कुल, आपकी थाली ही आपकी दवा है। समझदारी से खाएं, लंबी उम्र पाएं। हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के इस विशेष उत्सव में आपका स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूरे देश में 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है।
Yes, and it aims to spread awareness about the importance of a balanced diet, good food habits and overall health. And in 2025, this special week holds even more significance as lifestyle diseases are on the rise and conversations about food and wellness are becoming central to healthy living.
अभिषेक, इस पूरे हफ्ते का मकसद लोगों को बैलेंस डाइट की अहमियत समझाना और बचपन से ही पोषण की कमी को रोकना है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, सही खान पान की आदतें अपनाने, कुपोषण रोकने और जीवन शैली संबंधित बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस की थीम इस बार हर साल की तरह बदल गई है।
Yes, and the official theme for the National Nutrition Week 2025 is Eat Right for a Better Life. And this theme highlights how the choices we make at the dining table affect not just our health, but also our long-term quality of life. And eating right doesn't mean dieting or restrictions. It means a balanced meals, mindful portions, seasonal produce and home-cooked goodness. And Neha, in a world where both malnutrition and lifestyle diseases such as diabetes and hypertension are prevalent, educating people about the importance of a balanced diet and healthy eating habits is crucial, isn't it?
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां काम की डेडलाइन और मीटिंग्स की कोई कमी नहीं होती है, ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना काफी मुश्किल हो जाता है। सुबह हड़बड़ी में नाश्ता स्किप करना हो या दोपहर के खाने में बाहर का अनहेल्दी खाना, यह एक आम बात बन गई है। लेकिन आपकी व्यस्तता आपके स्वास्थ्य पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। खाना तभी संतुलित कहलाता है जब उसमें सभी तरह के पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद हों। अगर शरीर को प्राप्त पोषण नहीं मिलेगा तो अलग अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहने की संभावना बढ़ती है। ऐसी एक दिक्कत है शरीर में खून की कमी। खून की कमी या हीमोग्लोबिन कम होने पर व्यक्ति को कभी भी चक्कर आने लगते हैं, शरीर में कमजोरी हो जाती है, सांस फूलती है, मसल्स कमजोर होने लगते हैं और बार बार सिरदर्द भी हो सकता है।
And also, obesity has become a major public health challenge in India, affecting people across all age groups and increasing the risk of non-communicable diseases such as diabetes, heart disease and hypertension. And driven by unhealthy diets, sedentary lifestyles and environmental factors, obesity is rising at an alarming rate, impacting both urban and rural populations. And the shift towards processed foods, reduced physical activity and lifestyle changes has further contributed to this growing crisis. And recognizing the urgency of this issue, Prime Minister Narendra Modi emphasized the need for nationwide awareness and collective action to reduce obesity, particularly through lower edible oil consumption.
ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है. मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी. इसके लिए अपने खानपान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था. मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं.
आइए संतुलित आहार के महत्व के बारे में बात करते हैं. बैलेंस डाइट आपके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला कारक है. तो संतुलित आहार आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा आहार है जो आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व देता है, वो भी सही अनुपात में. इसका मतलब है फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, डेयरी उत्पाद, सभी उचित मात्रा में.
Yes, and exactly, a balanced diet helps you stay energetic, strengthens your immune system, supports growth, and reduces the risk of chronic diseases like diabetes, heart disease, and obesity. And let's not forget mental health. Studies have shown that eating a nutritious diet can even improve your mood and concentration. But it's not just about what you eat, it's also about how much you eat. Portion control is the key. Even healthy foods can become unhealthy if eaten in excess.
इसके साथ ही एक सुझाव है, रंगीन भोजन खाने का लक्ष्य रखें. अलग अलग रंगों के फलों और सब्जियों में अक्सर अलग अलग विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इंद्रधनुषी रंग खाए. और याद रखें, हाइड्रेटेड रहना भी उतना ही जरूरी है. पानी पाचन, रक्त संचार और यहां तक कि शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करता है.
And listeners, to maintain a balanced diet and adopt healthy eating habits, consider the following tips. Firstly, include a variety of foods in your diet, such as whole grains, fruits, vegetables, lean proteins, and healthy fats.
जी, इसके साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अतिरिक्त नमक और अतिरिक्त चीनी का सेवन सीमित करें. दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेट रहें. भोजन की मात्रा पर ध्यान देकर और अपने शरीर के भूख के संकेतों को सुनकर सचेत रूप से खाने का अभ्यास करें. बेहतर पोषण के लिए मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों का चयन करें. और इसके साथ ही संतुलित आहार सुनिश्चित करने और जल्दबाजी में खाने के फैसलों से बचने के लिए अपने भोजन की योजना पहले से ही बनाएं.
Yes, sir, listeners, how to build lifelong healthy nutrition habits. Building lifelong healthy nutrition habits requires a consistent and mindful approach.
बिल्कुल, ये भी सही बात कही आपने. बचपन से ही पोषण संबंधी शिक्षा शुरू करें और पूरे परिवार को इस प्रक्रिया में शामिल करें. किराने की खरीदारी करते समय सोच समझकर चुनाव करने के लिए खाद्य पदार्थों के लेबल ध्यान से पढ़ें.
And encourage regular meal times and minimize distractions like TV or mobile phones while eating.
सामग्री और मात्रा पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए घर पर ज्यादा बार खाना बनाएं. अपनी स्वस्थ खानपान की आदतों को पूरा करने और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहें.
And India has made huge progress in recent years, but challenges like malnutrition, undernutrition and anemia still affect us. And the government has launched several initiatives including the Fit India Movement, NPNCD, Poshan Abhiyan, Eat Right India, Khelo India to promote a healthier lifestyles, better nutrition and physical activity.
पोषण अभियान 2018 में शुरू किया गया था. इसका लक्ष्य बच्चों में बौनापन, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन की समस्या को कम करना है. साथ ही किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के बीच पोषण में सुधार करना है. यह अभियान जन आंदोलन को बढ़ावा देता है, एक जन आंदोलन जहां स्कूलों से लेकर स्थानीय समुदायों तक हर कोई अच्छे पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने में भूमिका निभाता है.
Yes, an ICDS scheme which operates through Anganwadi centers across the country offers supplementary nutrition, health checkups, immunization and early childhood education for children under 6 and for mothers. ICDS is one of the world's largest nutrition programs and a lifeline for millions of families in India. And so to conclude our discussion, let's remember that good nutrition is not a one-week effort. It's a lifelong habit, whether it's adding one more fruit to your plate, drinking more water or cutting down on sugar. Every small step counts.
बिल्कुल, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक सशक्त अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि पोषण पर ध्यान केंद्रित करना व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, बीमारियों के बोझ को कम करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने की कुंजी है। सचेत भोजन विकल्प चुनकर और स्वास्थ्य खानपान की आदतें अपनाकर हम एक स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के विषय का संदेश स्थायी परिवर्तन में परिवर्तित हो यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर पोषण शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और सशक्त सरकारी नीतियां आवश्यक हैं।
Yes, and as we celebrate National Nutrition Week 2025, let's pledge to prioritize our health by making informed dietary choices. Every bite you eat is either fighting disease or feeding it.
बिल्कुल, ध्यानपूर्वक भोजन करने की दिशा में कदम उठाएं और छोटे-छोटे इन स्टेप्स से आप स्वस्थ रह सकते हैं।
Yes, and now let's move on to our second topic in our Dateline section. That is the World Coconut Day. Well, World Coconut Day has been observed today. World Coconut Day aims to highlight the importance of coconuts in our daily lives, especially in countries like India, which is one of the largest producers.
नारियल को अक्सर जीवन का वृक्ष कहा जाता है और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी है। इसका पानी ताजगी देने वाला और नमी प्रदान करने वाला होता है। इसका गूदा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका तेल खाने पकाने और त्वचा की देखभाल के लिए बेहतरीन होता है और इनके पत्ते, छिलकों और खोल का इस्तेमाल रस्सियां, चटाई और हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। कई तटीय क्षेत्रों में नारियल आजीविका का साधन है, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं और यहां तक कि पारंपरिक चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Yes, and listeners, here are some fun facts for you. Did you know that coconut water was once used as a natural IV fluid in emergencies and coconuts aren't actually nuts? They are technically a drupe, a type of fruit.
जी, इनमें जीवाणुरोधी और कवक रोधी गुण होते हैं जो इस घावों और त्वचा के संक्रमण के इलाज में भी उपयोगी बनाते हैं। नारियल पानी को अक्सर एक प्राकृतिक ऊर्जा पेय के रूप में भी सुझाया जाता है।
Yes, and listeners, coconut have wide economic importance. Coconuts support the livelihoods of millions of farmers, especially in coastal and tropical regions. Products like coir from the husk are used to make ropes, mats, brushes and mattresses. Coconut-based industries contribute significantly to the economy of countries like India, Indonesia, the Philippines, and Sri Lanka.
वहीं इसके औद्योगिक और घरेलू उपयोग की बात करें तो इसके सीप का उपयोग कोयला, हस्तशिल्प और बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग छतों पर छप्पर बनाने, टोकरियां बुनने और सजावट के सामान बनाने में भी किया जाता है। यहां तक कि पेड़ के तने और लकड़ी का उपयोग निर्माण और फर्नीचर में किया जाता है। इनके पर्यावरणीय मूल की बात करें तो नारियल के पेड़ तटीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। वे छाया और हरियाली का स्रोत हैं और कम देखभाल के साथ खराब मिट्टी में भी उग सकते हैं।
So in conclusion, it can be said that coconuts are much more than just a tropical fruit. They are a source of food, health, income and sustainability. They play a vital role in the lives of people, especially in tropical countries, and deserve to be celebrated and protected.
बिल्कुल, तो चाहे आप नारियल पानी पी रहे हो, नारियल की चटनी खा रहे हो या नारियल तेल का इस्तेमाल कर रहे हो, आज इस अद्भुत फल की सराहना करने का एक बेहतर दिन है। आइए इसके साथ ही उन मेहनती किसानों को भी याद करें जो नारियल उगाते हैं और इस महत्वपूर्ण उद्योग को जीवित रखते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Manipur is known for its richness and biodiversity, including endemic flora and fauna. And the state is well known for brow antelia deer, locally known as sangai and shirui lily plant, which are not found anywhere in the world except in Manipur. And in an aim to promote the conservation and protection of such a species, certain festivals are organized in the state. Today we bring you such an endangered species found only in Manipur and its related festival from our Imphal correspondent.
Jaimang Lake is an unique creation of nature and situated at an altitude of about 7,252 on the Kaburu Range in Kangpukpi district of Manipur. Jaimang is a Liangmai word and its literal meaning in English would be something like lake or puzzle. The Himalayan crocodile newt, locally known as Tatui Tako, is found in a confined microhabitat of Jaimang Lake. In order to preserve this unique species, the Tatui Tako festival has been organized since last year in Kangpukpi district. This year, the 2 days long second annual Tatui Tako festival was organized on 20 and 21st August at Thanglang Atongba village and Jaimang Lake in Kangpukpi district. The festival was organized by Bena Jaimang Joint Development Committee with the support from the Directorate of Environment and Climate Change, Government of Manipur. As part of the festival, a seminar was held in which the impact of climate change on the habitats of salamanders and ecological significance of hill wetlands were thoroughly discussed. Different cultural troupes also showcased cultural dance and songs. The program officer at Directorate of Environment and Climate Change, Government of Manipur, S.K. Gangangai, who attended the festival, said that the directorate has implemented different activities, including rainwater harvesting and vermicomposting, to protect the lake and improve local livelihood. He also appealed to the public to join the conservation of Tatui Tako. Program officer S.K. Gainangmei said,
"We are coming as a second day of the festival. We have seen many unpleasant things like waste items of plastic bottles and eatable packets and other many waste items. I appealed all the visitors and the locals to maintain a good and hygienic lake because it has a unique feature that we have of crocodile. It's a very sensitive and endangered species of amphibian type found only in this lake."
On the concluding day of the festival, participants visited Jaimang Lake and pledged to strengthen conservation effort of the lake and its habitat. The festival not only celebrated the rare amphibian but also united communities for one cause, that is preserving biodiversity and safeguarding fragile ecosystem of Manipur for future generation. Jeje Thoksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
Maharashtra ke Mukhyamantri Devendra Fadnavis haal hi mein Nagpur zile सातनवारी गांव में देश के पहले स्मार्ट गांव का उद्घाटन किया। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले में स्थित सातनवरी को देश का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव घोषित किया। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, एआई संचालित कृषि एप्स, सोलर पंप्स और ड्रोन तकनीक से लैस इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत को डिजिटल और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। महाराष्ट्र के प्रत्येक तालुका के 10 गांवों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाने के लिए जल्द ही एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ऐसी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी बताया कि पहले चरण में राज्य के लगभग 3,500 गांव को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाया जाएगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की एक इकाई वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस ने राज्य सरकार और नागपुर जिला प्रशासन के सहयोग से नागपुर अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित सातनवरी गांव में आधुनिक तकनीक आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए 24 घरेलू कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है, जिससे यह गांव देश का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव बन गया है। वॉइस के ही सदस्य ने हमें बताया कि इस गांव में किस तरीके से खेती को स्मार्ट किया जा रहा है।
फार्मर को जो अब फर्टिलाइजर में 30-40% की कटौती हो सकती है, पानी में आपकी 30-40% कटौती हो सकती है, उसको अपनी फसल का सही मूल्य मिल पाए तो वो ऐप क्योंकि उसके पास है तो सही मूल्य का भी वो कर सकता है। कब उसको अपना उसे बना दिया, कब उसको करना चाहिए, क्योंकि सारा पूरा टाइम पीरियड भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपने क्या खेती लगाई। इसको जो है आपको 2 महीने के बाद में आपको देखना है कि भाई बीच में 2 महीने आपको मान लीजिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो आप छोड़, पानी जो है वो अपने आप चल रहा है। किसान जो है मतलब कुछ और भी एक्टिविटी कर रहा है, वो पैरेलल में कर सकते, लेकिन उसको ये आवश्यकता नहीं है कि उसको खेत में ही बैठना है।
निश्चित ही भविष्य में नागपुर से शुरू हुई यह पहल न सिर्फ ग्रामीण इलाकों को आधुनिक बनाएगी बल्कि भारत को डिजिटल शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परिक्रमा के लिए नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
As every year, this year too, the Cherry Blossom Festival will be organized on the 14th and 15th of November in Shillong, the capital of Meghalaya. The festival is a celebration of Meghalaya's and the Northeast traditional music, Western music, rock band performances, along with the delight of tribal cuisines.
When cherry trees bloom during October to November in Meghalaya, the Cherry Blossom Festival is celebrated. The trees are adorned with light purple cherry blossoms. Amidst this unique natural beauty, the Meghalaya Cherry Blossom Festival has created a distinct identity not only in India but also on the international stage. This year, international music star Jason Derulo and Ireland's famous rock band The Script will perform at the festival. During the event, concert, pop-up stalls and interactive expressions will take place at Shillong's Jawaharlal Nehru Stadium and Watts Lake. Such musical events are part of the recently announced concert economy by the state government, which aims to take Meghalaya cultural identity and economic growth to a new level. Paritosh Dikshit, Akashvani, Shillong.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारत के युकी भामरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने कोलंबिया के गोंजालो एस्कोबार और मेक्सिको के मुगुएल एंजेल रेस वरेला को 6-1, 7-5 से हराया। अब इस जोड़ी का मुकाबला जर्मनी के क्राविट्स और पुएट्सटी से होगा।
Earlier, two-time champion Japan's Naomi Osaka defeated world number 3 Coco Gauff to reach the women's singles quarterfinals, and she defeated Gauff 6-3, 6-2 to reach the final 8. The victory marked Osaka's return to a Grand Slam quarterfinal after 4.5 years, and with her win, the 27-year-old Osaka also reclaimed her spot in the top 20 of the WTA rankings. She will face Karolina Muchova of the Czech Republic in the quarterfinal, who booked her place with a win against Ukrainian 27th Marta Kostyuk. And in the men's singles, Felix Auger Aliassime defeated Andrei Rublev in straight sets as the Canadian 25th seed reached his first Grand Slam quarterfinal in 3 years. Auger Aliassime will play Australia's Alex de Minaur in the last 8. Novak Djokovic will take on Taylor Fritz in the quarterfinals tomorrow. The 24-time Grand Slam champion became the oldest man to reach the quarterfinals at all 4 majors in a single season after booking his spot in the round of 16 with a commanding 6-3, 6-3, 6-2 victory over Germany's Jan Lennart Struff. And now, on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended with modest losses today. The markets had opened in positive territory. However, they failed to hold initial gains and later slipped into negative zone. The Sensex decreased 207 points to close at 80,158. Similarly, Nifty declined 45 points to settle at 24,580. In the global crude oil market, Brent crude was trading around 1.9%, up at $69.44 per barrel, and WTI crude was also trading almost 3%, up at $65.91 per barrel when reports last came in.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
The day of 2nd September holds great significance in Indian freedom struggle, as on this day in 1946, the interim government of India was formed from the newly elected Constituent Assembly of India. It was for the first time since the coming of British that the government of India was in Indian hands, and this government had the task of assisting the transition of British India to independence. Originally, the government was headed by the Viceroy of India. But later, it was transformed into a council of ministers with the powers of a prime minister bestowed on the vice president of the council. This position was held by Jawaharlal Nehru. Vallabhbhai Patel held the portfolios of home affairs and information and broadcasting. The interim government remained in place until 15th of August 1947, the date of the independence of India.
New Delhi. And although the scene looks quiet enough, there was naturally tense excitement when members of India's interim government, under the leadership of Mr. Nehru, went to the Viceroy's house. They were received by Lord Wavell, who was to administer the oaths of allegiance, of office and of secrecy, whereby Indian affairs passed into the care of an all-Indian cabinet.
The elections for the Constituent Assembly were not direct elections, as the members were elected from each of the provincial legislative assembly.
Although India remained under the sovereignty of the United Kingdom until August 1947, The interim government proceeded to establish diplomatic relations with other countries, including the United States of America. The Constituent Assembly, from which the interim government was drawn, also began the task of drafting the constitution for independent India.
Today, we also pay tributes to the transnational Indian revolutionary Virendranath Chattopadhyay, who left us on this day in 1937. He was brother of the famous freedom fighter Sarojini Naidu and renowned Bengali poet and musician Harindranath Chattopadhyay. During the first decades of the 20th century, he carried out anti-imperial and anti-colonial campaign outside India, first in Europe and then in North America. Virendranath studied in Madras and Calcutta before joining Oxford University in 1902. Like other nationalist Indian students in England, he joined India House, London. During his years in England, Chattopadhyay established intensive contacts with revolutionary circles in Europe. With the outbreak of the First World War, Berlin became a hub for Indian revolutionary exiles. Virendranath became a leading figure within the Indian Independence Committee, founded in Berlin in September 1914.
The committee carried out campaign in and outside India, among Indian soldiers, and also engaged in military action and weapons training. After the First World War, Chattopadhyay founded the Indian Information Bureau in Berlin to help improve Indian-German relations. He also became active in the League Against Imperialism and spent the last years of his life in the Soviet Union. During the period of Stalin's repressions, he was accused of espionage and shot to death in 1937, having spent most of his life in exile in search of an ideology to build a future world. We salute his indomitable spirit and love for motherland.
तो पहली शख्सियत जिनका आज जन्मदिन है उनके बारे में बात करने से पहले आइए उनके फिल्म का ये डायलॉग सुनते हैं।
पुलिस स्टेशन?
पुलिस को ना बुलाइए, सिर्फ एक मिनट दीजिए। आपको आपको अपनी गीता की कसम।
क्या है?
काश मैंने वो झूठ ना बोला होता, वो एक झूठ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
कौन सा झूठ?
वो झूठ जिसे लेकर मैं आपकी जिंदगी में दाखिल हुई। आज तक इसलिए नहीं बताया।
क्यों नहीं बताया?
इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी।
हमारे श्रोता अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी, आज बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस साधना शिवदासनी का जन्मदिन है। उनका नाम केवल उनके अभिनय की वजह से ही नहीं बल्कि उनके खास हेयर स्टाइल और स्टाइलिश अंदाज के कारण भी काफी मशहूर हुआ। फिल्म अबाना उनकी पहली सिंधी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक छोटा रोल निभाया था। इसके बाद उन्होंने 1959 में बॉलीवुड में लव इन शिमला फिल्म से डेब्यू किया जो उनके लिए सफलता की पहली सीढ़ी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया जैसे मेरा साया, वक्त, वो कौन थी, अनीता, इंतकाम और राजकुमार। इन फिल्मों में उनके अभिनय को खूब तारीफ मिले। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
पुलिस स्टेशन?
पुलिस को ना।
Yes, and John Ronald Reuel Tolkien, or J.R.R. Tolkien, passed away on this day in 1973. He was an English writer and philologist. He was the author of the high fantasy works The Hobbit and The Lord of the Rings. He was appointed a commander of the Order of the British Empire by Queen Elizabeth II on 28th March 1972. And also Victor Emil Franklin passed on this day in 1997. He was an Austrian neurologist, psychologist, philosopher and Holocaust survivor who founded Logotherapy. And Franklin published 39 books and the autobiographical Man's Search for Meaning, a best-selling book, is based on his experiences in various Nazi concentration camps.
आज पुण्यतिथि है विष्णु सखाराम खांडेकर की। वे एक प्रख्यात मराठी साहित्यकार थे। खांडेकर पहले मराठी लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रसिद्ध कृति यताति भारतीय साहित्य में एक शाश्वत रचना मानी जाती है।
Keanu Charles Reeves was born on this day in 1964. He is a Canadian actor and musician. The recipient of numerous accolades in a career on screen spanning four decades, is known for his leading roles in action films, his amiable public image and his philanthropic efforts. In 2020, the New York Times ranked him as the fourth greatest actor of the 21st century. And in 2022, Time magazine named him one of the 100 most influential people of the world.
आज वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का जन्मदिन है। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया।
Yes, and William Everett Preston was born on this day in 1946. Let's listen into a hit track of his.
Bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you, I'm born.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।